شروع کریں گے آیت نمبر 122 سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی سفارش کسی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی. پیچھے بھی اس سے ملتی بھی آیت گزری. حقیقت یہ کہ قیامت کا دن اس سے بہت مختلف ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے سوچا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس دن ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے, کوئی سوچ لیتے ہیں کہ نبی شہید اور اسی طرح سے دوسرے نیک لوگ ہمارے کام آئیں گے. یہ سب کچھ ہوگا کب؟ جب ہماری اپنی بھی کچھ قابلیت ہوگی. سفارش برحق ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. کم سے کم کچھ لائبلٹی ہوگی پوری کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی سفارش سے فائدہ دے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی میٹرک بھی نہ پڑھا ہو اور کسی کو کہے کہ مجھے فلاں کالج کا پرنسپل لگوا دو. ممکن نہیں. ہاں آپ نے بھی ماسٹر کیا, کسی اور ایک دو نے بھی کیا, دونوں نے جاب کے لیے ریکویسٹ کی, آپ کسی سے کہتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے کہنے پہ آپ کو جاب مل جائے, لیکن کسی ان پڑھ کو تو کوئی کسی جگہ پہ نہیں لے جاتا. تو ہمیں صرف سفارش کی امید پر بیٹھ نہیں جانا بلکہ اپنی زندگی میں وہ کام لانے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں سفارش لینے کی بجائے سفارش کروانے کا, دوسروں کی سفارش کرنے کا اختیار ملے. لکھیں ذرا اپنے لیے یہ گول. آج سے ایسے کام کرنے ہیں کہ دوسروں کو سفارش مجھے ملے اس کی بجائے اللہ مجھے بلائے قیامت کے دن اور کہے کہ بندی تو بتا میں کس کس کو آگ سے بچاؤں, اور اللہ ہم سے ایسے کام لے لے. کوئی کسی کے بدلے میں نہیں جائے گا. حقیقت یہ کہ ہم سب کو اپنی فکر خود کرنے کی ضرورت ہے. اور جب قوموں کے اندر بے عملی آتی ہے نا تو خوش فہمیاں بہت آ جاتی ہیں. صحابہ کو ایسی خوش فہمیاں نہیں تھیں اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود, اتنے مار کے مارنے کے باوجود ان کو یہ فخر نہیں تھا. آج ہم کچھ نہ کر کے بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید جنت تو ہماری ہے. اب یہاں سے اللہ ایک ایسی ہستی سے ہمیں ملاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام, 4000 سال پہلے کی شخصیت, اور آج بھی دلوں میں یوں بستی ہیں کہ جیسے آج کے دور کے ہیرو ہوں. آپ فلمی دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ چند سال تک کسی کا عروج رہتا ہے, پھر اس کے بوڑھے ہونے یا اپنے کام کو چھوڑنے کے ساتھ ہی یا کسی اور نئے چہرے کے آتے ہی لوگ اس کو پیچھے ڈالنے لگتے ہیں. لیکن سچائی کے لیے جینے والے, حق کے راستے میں مشکلات سہنے والے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیڈر اور ہیرو بنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں, لیکن جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی آزمائش. حقیقت یہ کہ نعمت کا ملنا آزمائش کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے. لکھیں یہ جملہ. جس دن آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے, مثلا بیٹا مل گیا, شادی ہو گئی, رشتہ ہو گیا, گھر مل گیا, کوئی بھی نعمت, لکھ لیجئے کہ آپ کی آزمائش کا پہلا دن آ گیا. کیونکہ نعمتوں کی آزمائش ہوگی تبھی تو پیچھے چلیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کہاں سے کروایا؟ پہلی دفعہ ان کا باضابطہ ذکر آ رہا ہے قرآن میں. اور ذرا سنیے گا کہ اللہ اپنے پیارے اپنی چنی ہوئی شخصیت کا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. ہم کسی کا ذکر ایسے کرتے ہیں؟ ہم تو گولڈ میڈل سے بات کرتے ہیں, ایوارڈ وننگ ہیرو, فلاں بک میں ان کا نام. اللہ آزمائشوں سے بات شروع کرتے ہیں. ہم نے آزمایا, اس کا کہ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. آزمایا تو رب نے ان کو تھا, کس چیز میں آزمایا؟ ہر چیز میں آزمایا. ان کی عقل کا امتحان تھا, کیسے؟ شرک والے ماحول میں کھڑا کر دیا کہ دیکھتے ہیں بھلا ان کی عقل سلامت رہتی ہے کہ نہیں. پھر ان کے ہمت اور ارادے کا امتحان تھا. بادشاہ وقت چلی نمرود کے سامنے ان کو کھڑا کیا اور یہ ڈٹ گئے. تیسرے بارے میں ہم پڑھیں گے. پھر محبتوں کا امتحان لیا اللہ نے ان سے, بیوی کی محبت, بچے کی محبت, फिर बहुत ही छोटे बच्चे की मोहब्बत, इब्राहिम इन सारे इम्तिहानों में पास हो गए। रिज़ल्ट क्या है इब्राहिम का? फातम महुन, पूरे नंबरों के साथ पास हो गए। ये है असल में चुनाव की बात। इम्तिहान तो बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन पूरे नंबरों से पास थोड़े ही होते हैं। तो गोया के जो लोग अल्लाह के रास्ते में जम जाते हैं, अल्लाह ताला उनको पूरे नंबर देता है। हालांकि अगर आप इब्राहिम को उनके दौर में देखे जाके, तो कोई कामयाब शख्सियत नहीं दिखते बज़ाहर, कोई इतनी रौनक और मेला नहीं उनके साथ। लेकिन असल बात जो अल्लाह ताला देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि हम किन हालात में काम करते हैं। बस लोगों को हम दीन के बहुत बड़े बड़े काम करते देख कर कहते हैं वो कितने खुशकिस्मत हैं। नहीं, लिखिए ये जुमला भी शऊर से, बड़े बड़े काम करना खुशनसीबी नहीं है, मुश्किल हालात में जमना खुशनसीबी है। हो सकता है जो बड़े काम कर रहा है उसके लिए कोई मुखालफत ही ना हो, कोई रुकावट ही नहीं, कोई पत्थर ही नहीं रास्ते का, लेकिन आप जो छोटा छोटा काम कर रही हैं उसके लिए भी आपको कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। तो असल बात यह है कि किन कहाँ से चल के आए हो। आपने देखा होगा कि हम अपने मेहमानों की बहुत कदर करते हैं, लेकिन किस मेहमान की ज़्यादा कदर होती है? जो दूर से आता है, बहुत दिन के बाद आता है, आपको उसके आने की उम्मीद भी नहीं होती। हम कहते हैं ये बड़ी दूर से आए हुए मेहमान हैं, इनकी खिदमत करो, इनकी खातर करो। बिल्कुल इसी तरह जो इस दुनिया में बहुत दूर चला गया होता है, फोर्थ लेन का मुसाफिर बन के तेज़ गाड़ी चला रहा होता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंडिकेटर देता देता एग्ज़िट लेन में आता है, तो अल्लाह उसकी बड़ी कदर करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अमीर बाप के बेटे थे, बादशाह वक्त के पास वो मुलाजिम थे, वाला मुकाम था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सारी बातों को कुछ ना समझा और जम गए। जब वो इम्तिहान में पास हुए तो कुछ ना कुछ प्राइज़ तो मिलते ही है ना, तो काला इन्नी जाइलुकल नासी मामा, ये था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, ये था प्रेसिडेंट अवार्ड। अवार्ड क्या कि अल्लाह ने कहा मैं तुझे सब लोगों का इमाम बनाऊंगा। अल्लाह के चुनने के अंदाज़ भी निराले हैं। लोग जब चुनते हैं तो कहते हैं अब इस चुनाव की खुशी में इनको छुट्टी दे दो, आज इनका फुला देना, इनको अलग कर दो। अल्लाह जब किसी को चुनता है ना, तो उससे लोगों की हिदायत का काम लेता है। बुखारी की रिवायत है, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ देते हैं। तो लिहाजा इब्राहिम को जब चुना तो बशरी तकाजे से फौरन अपनी औलाद का ख्याल आया। हमारे लिए भी अमल की बात है कि जब आपको दीन की नेमत मिले, जैसे दौलत कुरान की मिल रही है, तो अपने बच्चों की फ़िक्र करें, उनको भी इस दौलत से जोड़ें। कालव मिन ज़ुर्रियती, अरज़ के इब्राहिम ने, और क्या मेरी औलाद से भी यही बात है, यानी जो मुझे मिला वो मेरे बच्चों को भी मिलेगा? नो, यहाँ नसब नहीं चलता। काला ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, उसने जवाब दिया मेरा वादा ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं है, और ये कि हमने इस घर यानी काबा को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह बना लिया, और लोगों को हुक्म दिया था यानी, और ये कि हमने इस घर यानी खाना काबा को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है, इस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो, मुकाम इब्राहिम। और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की कि मेरे घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। अल्लाह अकबर, हमने क्या सोचा था कि चुनने के बाद इनकी रस्में ताजपोशी होगी, इनको सबके बीच बुलाया जाएगा, फिर एक बहुत बड़ा पंडाल लगेगा, फिर इनको वहाँ हाथ में एक ट्रॉफी दी जाएगी। अल्लाह कह रहा है आप इस घर को साफ करें, क्लीनिंग का काम मिल रहा चुने हुओं को। है ना हमारी सोच और अल्लाह का मिजाज फ़र्क। आज कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि मुझे अल्लाह के घर को साफ़ करने का मौका मिला, ये मेरे लिए एहसास है। हम कहते हूँ हम तो अपने घरों में भी नहीं करते, ना करें घरों में, कौन करता है? सबके पास बहुत है देने को मासियों को, लेकिन अल्लाह के घरों में वो करते हैं जो चुने जाते हैं। इस आयत पे अपने लिए नियत करें, क्या हकीकत में मैं इस जगह को अल्लाह का घर समझती हूँ? जहाँ अल्लाह का नाम पढ़ा जाता है वो अल्लाह का घर है, दरो दीवार किसी की मलकियत हो, लेकिन इस वक्त ये जगह ये कमरा आपका स्कूल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को पढ़ने के बाद और इतना बंदगी के मौजू पे सुनने के बाद अब हमें इस बात पे कि नो कहने की ज़रूरत है कि हम ये काम नहीं कर सकते। किसी को है? गैस गैस को नहीं कह रही, ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको भी अल्लाह ने चुना हुआ है, जो आपको वर्ड्स का आप में दिख रहे हैं। तो इस आयत पे कल से आपकी ड्यूटीज लगा दे, तैयार है? मैं नहीं लगाती, ना मेरा काम है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, कल खुद ही इधर मौजूद होंगे जो आपकी ड्यूटियाँ लगाएंगे, ठीक है? और खुश हों, रोना नहीं इस पर, तड़पना नहीं, बेचैन नहीं होना। और जितना आप देखिएगा इस जगह को साफ करेंगे ना, तो उतना आपको ईमान मिलेगा, उतनी आजिज़ी मिलेगी, मज़ा आएगा, इन्जॉय करेंगे, इतना आपको अच्छा लगेगा, आप कहेंगे कि मैं इसी काम में लगी रहूँ। जैसे मुझे चंद दिन से किसी की बात बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं पहले भी क्लास में आती थी और क्लास के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदारी भी उन पर आई है, तो वो कहती हैं कि पहले क्लास में भी बैठती थी तो ईमान मिलता था, लेकिन आप तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरा दिल था पता नहीं कुछ और कहेंगी, मज़ा क्या आ रहा है, करिए मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं आ भी रही हूँ और मैं एक खिदमत भी अंजाम दे रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यकीन करें, जितना जिस बच्चे को आप देखते हैं ना, आपको उस बच्चे से ज़्यादा प्यार हो जाता है। ऐसे ही है ना, जो छोटे बच्चे बाज़ बीमार होते हैं तो माएँ उनकी हर वक्त देखभाल करती हैं, जितना इस दीन के बच्चे और अपने दीन की जगहों को आप देखेंगे, इसका ख्याल करेंगे, उतना जल्दी अल्लाह आपको आपकी अपनी जगह भी देगा। ये हम अपने रवैयों से इस चीज़ को दूर या नज़दीक करते हैं कि अल्लाह कहते हैं इसको तो केयर ही कोई नहीं किसी चीज़ की। तो इब्राहिम ने नहीं कहा कि अल्लाह मैं क्यों करूँ, क्या ज़रूरत है करने की। और आप देखिए कि यहाँ रुक का इस सजूद की बात आई है, रुकू और सजदे करने वाले। हम अमूमन इस चीज़ के साथ मस्जिद को जोड़ते हैं, राइट? हालांकि रुकू क्या है? आजिज़ी, झुकना, सजदा के बंदगी की हद। यानी इंसान अल्लाह के आगे झुकता है, जहाँ से आपको रुकू और सजदे करने की इनर्जी मिले, जहाँ से अल्लाह की मोहब्बत मिले, क्या वो चीज़ मस्जिद से कम हो सकती है? लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट एक ही बन गया है, दीन के नाम पे मस्जिद। और मस्जिदों की भी खिदमत अगर हम कर लें तो बड़े सवाब का काम है, इल्ला ये कि हम उसको अपना घर समझें। जितना बेकार माल, जितनी ख़राब चीज़ें हमें मस्जिदों में दिखती हैं, इर्द गिर्द वो हमारे घरों में हो, तो हम एक दिन बर्दाश्त ना करें। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इब्राहिम की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। अब देखिए, बाप बेटा दोनों हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, और क्या कहते हैं, दुआएँ क्या? यहाँ से इब्राहिम की कुछ दुआएं और उसके बाद आगे जिक्र होगा। व इस काल इब्राहिम रब्बी जल हज़ बलदन आमिनम वर्ज़ुक अखलहु मिन समरात। और ये कि इब्राहिम ने दुआ की है, मेरे रब इस शहर को अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखरत को माने इन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। जवाब में इसके रब ने फरमाया, और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं इसको भी दे दूँगा, मगर आखिरकार इसे अजाब जहन्नुम की तरफ घसीटूँगा और वो बदतरीन ठिकाना है। यहाँ देखिए इब्राहिम ने क्या मांगा है, अमन मांगा है। हम भी अमन मांगते हैं, अल्लाह हमारे मुल्कों में भी अमन कर दे, हमारे घरों में भी अमन चैन कर दे, घर के झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म करके अल्लाह ताला वहाँ हक और दीन की बातों को खोल दे। आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए भी दुआएँ मांगी हैं, फल की बात है। क्या पता चला कि हमें अपने बच्चों के लिए दुनिया भी मांगनी है और आखिरत भी मांगनी है। हमें भी अपने बच्चों की दुनिया बनाते बनाते उनकी आखिरत को नहीं भूलना, वरना याद रखिए कि दुनिया तो बन गई, आखिरत ना बनी तो क्या बनेगा।